Om Shanti. 19 December 1978. भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना, तो बाप दादा के बोल सुने हैं कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार में भी साक्षात रूप में होगा, सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन यह साक्षात रूप में साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी ही हर एक आत्मा अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का रूप प्रत्यक्ष रूप में दिखाएगी, जिसमें यह किसको भी क्वेश्चन नहीं होगा कि यह होगा या नहीं होगा। अभी तो आपस में अगर नंबर भी निकालो तो फिर भी क्वेश्चन उठते हैं, यह कैसे यह कैसे, लेकिन अभी जल्दी ही प्रत्यक्ष देखेंगे राजा कौन, रानी कौन व रॉयल फैमिली कौन। इसके भी पुरुषार्थ की गति बड़ी गहन है, समान होते हुए भी चाहे अभी प्लस में भी दिखाई देते हैं, फिर भी पुरुषार्थ की गति गुह्य होने के कारण नंबर 1-2 हो ही जाएंगे। अभी हरेक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे कोई धूल के अंदर हीरा चमकता हो, कभी स्पष्ट दिखाई देगा कभी छिपा हुआ नजर आएगा, तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर जरूर आते हैं लेकिन दिखाई देते हैं, और फिर अंत में अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। प्रत्यक्षता का पाठ बजाते हुए अपना वर्तमान माला की मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन थोड़ी सी रीस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय क्या हो जाता है, रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्षता के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। यह पर्दा समाप्त हो जाएगा, संपन्नता का साक्षात्कार होने से कोई में संकल्प ही नहीं उठेगा कि यह भी यह नंबर ले सकते हैं। अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती थी ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही नहीं सके। ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रॉयल्टी में दिखाई देगी। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते ना, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अभी स्पष्ट रूप में 8 नंबर निकालने में भी क्वेश्चन उठता है, रखे या ना रखे। अव्यक्त मुरली है, 19 December 1978, दीदी जी से मुलाकात। तो भविष्य राज्य की रॉयल फैमिली अभी से प्रत्यक्ष होती जाएगी ना, जो बाप दादा के बोल सुने कि अंत में सब स्पष्ट साक्षात्कार होगा, तो क्या वह दिव्य दृष्टि से होगा? साक्षात्कार रूप में होगा, सबको दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने का ड्रामा तो और होगा, लेकिन यह साक्षात रूप से साक्षात्कार होगा। अभी जल्दी से हर एक आत्मा क्या होगी, अपनी रॉयल्टी द्वारा रियलिटी का रूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाएगी। राजा कौन, रानी कौन, रॉयल फैमिली कौन, ये जो पुरुषार्थ है इसकी गति बड़ी गहन है। अभी हरेक के पुरुषार्थ की विशेषता दिखाई भी देती है, लेकिन जैसे धूल के अंदर हीरा चमकता है, कभी स्पष्ट दिखाई देता है कभी छिप जाता है, तो अभी के पुरुषार्थ में चमकते हुए हीरे नजर आते जाएंगे लेकिन ऐसे दिखाई देते, और फिर अंत में अंत अर्थात लास्ट घड़ी नहीं संगम का अंत अर्थात कुछ समय पहले से ही प्रत्यक्षता जरूर होगी। वर्तमान माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होगा, पर अभी क्या है, थोड़ी सी रीस की धूल का पर्दा है। अभी रेस में चलते चलते कभी रेस के बजाय क्या हो जाता है, रीस में बदल जाता है। यही धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को क्या करता है, छिपा देता है, और जब यह पर्दा हट जाएगा, कौन सा पर्दा, रीस का पर्दा, उठ जाएगा कि यह भी हट जाएगा, तो छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्षता के संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे, अर्थात रीस का पर्दा खत्म हो जाएगा और संपन्न हीरे चमकते हुए स्टेज पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जैसे साकार में मम्मा बाबा की तरफ कोई की रीस नहीं हो सकती है ना, ऐसे नंबरवार इतने स्पष्ट होंगे जो कोई रीस कर ही ना सके, ऐसे रॉयल फैमिली अभी से ही रियलिटी में दिखाई देंगे। अभी तो 8 नंबर भी नहीं निकाल सकते, अभी फिर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर क्या होगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये मुरली है 78 की, हीरे जो है वो छिपे हुए है, किसलिए, रीस की धूल। तो एक है रेस और दूसरा है रीस, रेस अर्थात दौड़, रेस RAC, और रीस अर्थात, रीस अर्थात कॉम्पिटिशन। एक है रेसिंग, एक है रेस या रेसिंग, दूसरा है कंपटीशन, कंपटीशन अर्थात प्रतिस्पर्धा, अर्थात दूसरों को हराकर आगे जाना, कंपटीशन, टूर्नामेंट्स, कॉन्टेस्ट या फिर प्रतिस्पर्धा, राइवलरी, ये सारे इस तरह के शब्द है। तो एक तरफ है रेस, रेस तो करना है, रेस अर्थात दौड़, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति अपने पुरुषार्थ में जा रहा है, परंतु बाबा यह कहते हैं कि चमकते हुए हीरे तो है पर इसमें क्या आ जाता है, रीस का पर्दा, वो क्या करता है, हीरे को छिपा देता है। तो रीस अर्थात दूसरों को हरा कर, कंपीट करके दूसरों के साथ, उससे आगे निकल जाने की इच्छा, इसे रीस कहा गया है। तो रीस को बाबा ने पर्दा कहा है, इस रीस के पर्दे को फुल स्टॉप करो, ये आज का काम है। तो प्रश्न है कि ब्राह्मण आत्मा रीस कहां कहां करती है, रीस अर्थात हम ये सहन नहीं कर सकते कि दूसरा हमसे भी आगे बढ़ जाए। नेपोलियन हुआ था कभी, बहुत छोटा कद था उसका, नेपोलियन जो था बहुत ही छोटा कद का था, उसके जीवन में उल्लेख है कि एक बार वो अलमारी से कोई किताब निकाल रहा था, परंतु क्योंकि वो छोटा था और किताब बहुत ऊंची थी, तो उसके पिता, उसके पीछे उसका एक कमांडर सेना का खड़ा था जो कि बहुत ऊंचा था, ऊंचा अर्थात टॉल था, लंबा। तो वो कहता है कि मास्टर या कमांडर जो कि उसको नाम से पुकारता है, ये शायद आपसे नहीं निकलेगा, आपकी सेना में सबसे ऊंचा मैं हूं, मैं निकाल के देता हूं। वो कहते हैं, नेपोलियन उसको कहता है, खबरदार ऊंचा मत कहना, तुम लंबे जरूर हो सकते हो पर मेरे से ऊंचे नहीं हो, तुम लंबे होंगे परंतु ऊंचा नहीं, श्रेष्ठ मैं ही हूं, ऊंचा श्रेष्ठ मैं ही हूं, ऊंचा मैं ही हूं। तो रीस अर्थात कंपीट करना, दूसरों से आगे निकल जाने की तीव्र अभिप्सा, इसको रीस कहा जाता है, दूसरों को हरा कर और फिर आगे निकल जाना। दुनिया में देखे जाओ तो बचपन से ही ऐसे ही संस्कार डाले हुए हैं कि दूसरों से आगे निकलना है, रीस। तो एक तो है रेस और दूसरी है रीस, ब्राह्मण आत्मा रीस कंपटीशन किस किस में करती है। बाबा ने कहा इस रीस को फुल स्टॉप करो, रीस का ही पर्दा है जिससे हीरे छुपे हुए, और ये किससे बात कर रहे, बड़ी दीदी से बात कर रहे, ये जो पैराग्राफ है दीदी और दादियों से मुलाकात का है। जो आठ नहीं निकल रहे उसका भी कारण बताया बाबा ने, रीस, तो इसको हटाओ। तो रीस किस किस में करते हैं? चार टॉपिक से, चार जगह पर रीस होती है ब्राह्मण आत्माओं में। सबसे पहले ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा और चौथा सेवा। ये चार जगह रीस होती है। रीस की बात चल रही है, लेट कमर। राइवलरी, सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान में कहां कहां पर रीस होती है? कंपटीशन, रेसिंग करनी है। रेसिंग अलग है, हेल्दी रेसिंग जिसको कहते हैं, जो अनहेल्दी रेसिंग है, अनहेल्दी जो कंपटीशन है उसको रीस कहा जाता है। वैसे कंपटीशन शब्द रेस के लिए नहीं है, रेस अर्थात दौड़, केवल दौड़ जिसमें व्यक्ति अकेला दौड़ रहा है। रीस अर्थात जहां पर कॉम्पीट कर रहा है, दूसरों को हराना है और फिर आगे निकल जाना है। राइवलरी का भाव है, शत्रुता का भाव जिसमें समाया हुआ है सूक्ष्म रीति से। तो सबसे पहला है ज्ञान। तो ज्ञान में कहां कहां न चाहते हुए भी रीस होती है? सबसे पहला तो है सुनाने में, दूसरा ज्ञान में हम उससे अधिक अच्छा सुनाएं, लिखने में हम उससे ज्यादा अच्छा लिखे, और ज्ञान में रीस चिंतन में, उसने जो चिंतन किया उससे ज्यादा अच्छा हम और चिंतन करें। एक है हेल्दी, एक है अनहेल्दी। उसको हरा कर, उसको नीचे दिखाकर, उसके साथ कंपीट कर ये जताकर कि हम उससे सुपीरियर है, हायर है, उत्कटासन, सुपीरियरिटी, ये जो भाव है। कि ज्ञान में आगे जाना बहुत अच्छी बात है, परंतु ज्ञान में भी बहुत बड़ी माया है जब कंपैरिजन करते हैं। रीस अर्थात जहां पर कंपैरिजन है, रेस में कंपैरिजन नहीं है। रेस अपने आप अकेले की दौड़ है, अकेला व्यक्ति जिसमें जा रहा है, परंतु जहां रीस है वहां पर कंपैरिजन है।
रेस में कंपटीशन भी नहीं है।
रेस कंपटीशन अर्थात ही रीस अर्थात ही कंपटीशन। हमने रीस के लिए ही कंपटीशन शब्द प्रयोग किया है। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो मुरली का है उसमें दो शब्द है, रेसिंग और कंपटीशन। रेस के लिए रेसिंग कहा है और रीस के लिए कंपटीशन कहा है। तो कंपटीशन जहां होता है, कट थ्रोट, गला घोट प्रतियोगिता जिसको कहा जाता है, गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन, हर चीज में, फैशन में, पॉलिटिक्स में, फिल्मों में, एक ही दिन दो फिल्में रिलीज, हर चीज में, बचपन से लेके तो देखा जाए कंपटीशन ही कंपटीशन है, दो अखबारों में, हर चीज में, दो देशों में, दो व्यक्तियों में, दो समाज में, दो परिवार में, दो स्कूल में, दो प्रोफेशंस में, हर चीज में, हर चीज में कंपटीशन ही कंपटीशन है। और क्योंकि ट्रेनिंग ही समाज की ऐसी है कि हर जगह कंपटीशन के ही बीज बचपन से बोए जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसे बचपन से सिखाया जाता है कि उससे तुम्हें आगे जाना है, यही उसको सिखाया जाता है। उसका भी क्या दोष, छोटा सा बच्चा, उसे तो पता भी नहीं। वो सूक्ष्म रीति से नफरत के बीज वहीं बोए जाते हैं, दो कंपनियों के बीच, दो हॉस्पिटल के बीच। हमारा हॉस्पिटल ज्यादा चलना चाहिए, हमारे इधर कम पेशेंट क्यों, हमारे इधर ज्यादा पेशेंट चाहिए, दो डॉक्टरों के बीच। जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन आते हैं दूसरे, अरे किसने लिखा ये, उसको कुछ समझ है या नहीं है, सब गलत है, बिल्कुल मत लेना है, मैं जो लिख रहा हूं वो लेना, यही राइट है, अच्छा हो गया यहां आ गए बच गए। पहले तो हर हॉस्पिटल यही जताना चाहता है कि तुम अच्छा हो गए हमारे पास आ गए, नहीं तो गए थे उधर, तो फिर भी लेट तो हो गया पर टाइम पर आ गए, फिर भी मतलब जल्दी आ गए जाने से, आप बच जाओगे चिंता मत करो। दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है हर एक व्यक्ति, कंपैरिजन है हर चीज में कंपैरिजन। तो हम बात कर रहे थे ज्ञान में कंपैरिजन, तो ज्ञान में सबसे पहला है ज्ञान सुनाना अर्थात भाषण। उसने ऐसा भाषण किया, अब हम उससे अच्छा भाषण करेंगे, क्या करेगा तो ज्ञान सुनाना, दूसरा चिंतन, अगला ज्ञान में ज्ञान में लिखना बोल दिया, चौथा कंपैरिजन कंपटीशन, ज्ञान में याद का टॉपिक नहीं चालू है, ज्ञान का टॉपिक चालू है। अच्छा बाय हार्ट करने में, वाह वाह ये है बाय हार्ट करने में, ठीक है स्मरण, और एक रीति से अच्छा भी है ये, परंतु हमने कहा ना इसमें भी माया, हम तो बात कर रहे ये रीस का पर्दा किससे बात कर रहे हैं, जो तीव्र पुरुषार्थी है उनके पुरुषार्थ में। सूक्ष्म रीति से कंपैरिजन चालू हो जाता है, हर चीज में कंपैरिजन करते हैं कि उसने ऐसा मेरा ऐसा, उसने ऐसा मेरा ऐसा, उसने ऐसा मेरा ऐसा, इसमें कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। अगर देखा जाए संपूर्ण सृष्टि चक्र को तो हरेक आत्मा की अपनी एक जर्नी है, हरेक अपना एक एक मुसाफिर है, अकेले पथ पर चल रहा है व्यक्ति, इसमें दो व्यक्तियों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है। जेन मास्टर रिंझाई करके हुआ है, उसने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है कि वो लिखता है और अपने शिष्यों को समझाता है, देखो इन घास, ये जो घास है उगी हुई, मैंने आज तक इन घास को कभी भी ईर्ष्या करते नहीं देखा इन बड़े बड़े वृक्षों से, और ना ही इन बड़े बड़े वृक्षों को कभी नीचे नीचे नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए देखा इन छोटे छोटे घास को। घास को प्रकृति ने वैसा ही बनाया है, वृक्ष को प्रकृति ने वैसा ही बनाया है, जो जैसा है वो अपनी क्षमता के आधार से, हरेक का पार्ट अपना अपना है ये हमें पता है, पर उसके साथ में बहुत सारी चीजें, हरेक का भाग्य अपना अपना है, हरेक की बीमारी अपनी अपनी है, हरेक का प्रारब्ध अपना अपना है, हरेक का कमजोरी अपनी अपनी है, हरेक की विशेषता अपनी अपनी है, हरेक के हिसाब किताब अपने अपने हैं, तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है। उसने ये किया तो हम भी ये करें, ऐसा नहीं हो सकता है। हरेक की बुद्धि, हरेक की क्षमता, हरेक की बुद्धिमत्ता, हरेक की स्मरण शक्ति, हरेक के हिसाब किताब, अंडरस्टैंडिंग समझ, ज्ञान की पकड़, हरेक की अलग 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 अलग, हरेक जिन परिस्थितियों से गुजरा है, हरेक जिस घर में जन्म लिया है, जो संस्कृति में जन्म लिया है, जिस वातावरण में पला है, जिस प्रकार को का उसको सामना करना पड़ा है बचपन में बहुत ही संघर्ष में, वो हरेक का अलग 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 है। हरेक के साथ जो जो हुआ है, शायद हो सकता है बहुत अत्याचार हुआ, बहुत ट्रॉमा हुआ बचपन में, और उसके बाद वो इधर आया है, इतनी दुखद घटनाएं हुई है, तो दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। हरेक यूनिक है, हरेक अलग है, हम ये कर ही नहीं कह नहीं सकते कि वो ऐसा है तो मैं भी, हाँ ये ठीक है कि मैं भी प्रयत्न करूं परंतु उसके भी आगे चला जाऊं, ये जो निगेटिव फीलिंग है, ये जेलसी है, इसमें ईर्ष्या इसमें समाई हुई है, उसमें ईर्ष्या जलाती है व्यक्ति को, जलता है, बेचैन रहता है दिन रात कि कैसे आगे जाऊं, कैसे आगे जाऊं, कैसे आगे जाऊं दूसरों से। और इसमें एक चीज और भी है, दूसरों से आगे जाने की भावना, इसमें यह भी है कि दूसरों, ये सब सिमिलर भावनाएं हैं, दूसरों को हराने की भावना, दूसरों से आगे जाने की भावना, दूसरों को नीचे दिखाने की भावना, दूसरों को यह प्रूव करना कि वो गलत है, ये सूक्ष्म रीति से हमारे मन में समाया हुआ है कि हम ये जताना चाहते हैं कि ये सिद्ध कर दे कि गलती उसी की थी। फाइनली जैसे एक उदाहरण है कि एक राजनेता होता है, इलेक्शन हार जाता है, बहुत कंगाल बन जाता है, तो कोई उसे अपने कपड़ों की दुकान में रख देता है, परंतु उसकी आदत ऐसी होती है कि जो भी कस्टमर आता है बहुत झगड़ा करता है उससे, कस्टमर से बहुत ही ज्यादा झगड़ा करता है, उसकी आदत पहले से झगड़ा करने की होती है, तो जो भी कस्टमर आता है वो हर कस्टमर से झगड़ा करता है, तो मालिक परेशान हो जाता है, उसको कई बार समझाता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो आ रहा है ग्राहक वो हमेशा राइट होते हैं, तुम कभी भी उनसे झगड़ा नहीं करो। तो एक दिन राजनेता जो होता है वो छोड़ ही देता है नौकरी और चला जाता है। कई दिनों के बाद वो जो मालिक होता है उसको वो राजनेता दिखता है कि अभी वो पुलिस बन गया है, ट्रैफिक पुलिस होता है, तो वो उससे मिलता है, इधर कैसे पहुंचे? वो पुलिस कहता है, भूतपूर्व राजनेता, ये एक ही प्रोफेशन है जिसमें कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग। ये तो कस्टमर ये प्रोफेशन में हमेशा कभी भी उसको पकड़ा जा सकता है। तो व्यक्ति की एक सूक्ष्म ये इच्छा भी होती है कि ये सिद्ध करे कि दूसरा गलत है, दूसरे से आगे जाना है, दूसरों को हराना है, दूसरों से कम्पीट करना है, यही रीस का पर्दा है। तो ज्ञान में भी ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान को याद रखना, ज्ञान का मनन करना, ज्ञान में आगे जाना, या फिर दूसरा और एक गहराई, वो जितनी गहराई में है ना हम उससे ज्यादा गहराई में जाएंगे, उसमें भी कंपटीशन। तो ये है ज्ञान की रीस। दूसरा है योग में रीस, वो कौन कौन सी? बाबा ने कहा हाँ, सबसे पहला है कि अभी कुछ तो हमसे होता नहीं तो हम सबसे जल्दी उठेंगे और दूसरों को हराएंगे। इसमें भी तो अहंकार की बड़ी तृप्ति होती है कि 2 बजे उठ जाना और दूसरे देखे भी थोड़ा सा कि दूसरों ने हमको जब तक देखा नहीं तब तक तृप्ति कहाँ होती है। हम चुपचाप अकेले ही 2 बजे उठ के कहीं एकांत में अगर जाए, कोई कमरा दे दे तुम यहाँ योग करो और कोई देखे ही नहीं तो योगी नहीं लगेगा। तो एक तो ये योग में टाइम, दूसरा योग में रीस, अनुभवों में बैठने की जगह और कैसे बैठ रहे हैं, हम कितने स्थिर बैठते हैं, ये देखो कभी इधर हलते कभी इधर, कभी इधर करते इधर करते हैं, हम बिल्कुल नहीं सोते हैं, हम बिल्कुल, दूसरा देखो कितना हिलता है, हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे, इनको तो हिलने की आदत है बहुत, बिल्कुल ऐसे, क्या योग चालू है पता नहीं अंदर, पर स्थिर है एकदम, और हम थोड़ा ज्यादा योग करें, कोई 7:30 बजे उठ जाते हैं 8:30 बजे तक बैठे रहेंगे, और और रीस किस में? योग में चार्ट लिखने में, वो तो अच्छी बात है एक रीति से, ये सारी अच्छी बातें हैं, परंतु उसमें भी सूक्ष्म ईर्ष्या, सूक्ष्म कंपटीशन, सूक्ष्म दूसरे से आगे जाने का या दिखावे का भाव, ये दिखाना कि हमें, क्योंकि व्यक्ति जो भी करता है, उस दिन जो बताया था 3 प्रकार के व्यक्तित्व है संसार में, एक है दृश्य, एक है दर्शक, एक है दृष्टा। दृश्य अर्थात जो कुछ भी करता है सब कुछ दिखावे के लिए है, सब कुछ दूसरों को दिखावे करने के लिए, स्वयं का जो पुरुषार्थ है वो अलग, परंतु जो कुछ भी दिखा रहे जैसे दुनिया हमको देख ले, आगे पीछे घूमना, आगे आगे करना, ये जो है ये दृश्य है। दूसरे व्यक्तित्व है वो है दर्शक, जो देखते हैं ऑडियंस और प्रभावित होते रहते हैं, सीन जो भी आ रहा है वो देखते हैं, दुख आया तो दुख से प्रभावित होते हैं और दुखी हो जाते हैं, खुशी की बात आई तो खुश को देखते हैं और खुश हो जाते हैं, जैसा स्क्रीन पर होते रहता है और जो जो सीन आते रहते हैं उससे प्रभावित होना, वो दर्शक कैटेगरी है। तीसरी भी कैटेगरी आत्माओं की, वो है दृष्टा, वो ना तो इधर है ना तो इधर है, वो उस तरह के दर्शक भी नहीं, ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वर, और तीसरा है डिटैच्ड ऑब्जर्वर, दृष्टा, ऐसा भी नहीं कि अच्छे नहीं है या वो अच्छा नहीं है। हमको लगता है ये व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसकी जगह कोई दूसरा आ जाए, बाबा इसको चेंज कर दो, ये इंचार्ज बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको चेंज कर दो। परंतु जो है ना वही सबसे अच्छा है, परिचित है। जो नया आएगा अपने अपरिचित दुखों को लेकर आएगा, वो पता ही नहीं हमको क्या होगा, इसके साथ तो एडजस्ट हो गए। जो नया आएगा वो पता नहीं कैसा होगा। इसलिए स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति परिचित है। और योग में सबसे बड़ी एक माया जो है वो है दिखावा, वो है दिखावा। जैसे उस कहानी में दिखाया एलिस इन वंडरलैंड की छोटी सी बच्ची एलिस, वो एक खरगोश के मान में जाती है और नीचे गिरने लगती है, ठीक है। तो वो नीचे 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 आती रहती है, तो वहां पर एक बहुत सुंदर संवाद है। वो अकेली नीचे नीचे आ रही है और फिर सोचती है कि उसने किताबों में पढ़ा था कि उसको लगता है मैं शायद धरती के मध्य में जा रही हूं। वो कहती हां, वो अपना उसका जो ज्ञान है ना ज्योग्राफी का वो याद कर दिए, हाँ मुझे पता है कि वो 4000 मील अंदर है। फिर कहती हाँ इसका लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होगा, ऐसे भारी भरकम शब्द वो कहती है। और लेखक ने लिखा है कि वो इसलिए कह रही है, परंतु उसका इस बात का दुख भी है कि वो इतना बड़ा ज्ञान सुना रही है, उसने जो किताबें में पढ़ा है, पर उसको सुनने वाला यहां कोई भी नहीं है। इसके लिए उस एलिस को थोड़ा सा दुख भी है अंदर, क्योंकि वो जब नीचे नीचे जा रही है तो वो याद कर रही है कि हाँ मैंने सुना था, किताब में पढ़ा था, पर यहां कोई है ही नहीं ये सुनने के लिए कि मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे पता है ये मेरा पढ़ा हुआ है कि 4000 मील अंदर है धरती। और वो बड़े बड़े शब्द जिनका अर्थ उसको भी नहीं पता रहता है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, पर फिर भी बोलती है क्या लैटिट्यूड होगा और क्या लॉन्जिट्यूड होगा। फिर दुख भी करती है कि मुझे कोई सुन भी तो नहीं रहा है, तो किसको सुनाऊं। तो जो योग में, योग गुप्त चीज है, ये दिखता थोड़ी ना, कोई सुबह से लेकर शाम तक बैठा है बाबा के कमरे में, क्या हो रहा है अंदर किसको पता है, योग दिखाई थोड़ी देता है। और कोई हो सकता है कि दिन रात सेवाओं में है परंतु फिर भी याद में है, दोनों चीजें हैं। कोई मौन में है, कोई बहुत बात कर रहा है, परंतु हो सकता है जो बात कर रहा है वही वास्तविक योग कर रहा है, और जो मौन में है वो योग का एक आडंबर या दिखावा मात्र है। तो दूसरा है योग। तीसरा है धारणा। धारणाओं में रीस कहां पर, कंपटीशन। धारणाओं में भी रीस हो सकती है, कौन सी धारणा तो पॉजिटिव चीज है। हाँ, धारणा में रीस होगा तो धारणा कहां है। एक बार भी सुनाया था ना, तीन छात्र मिलते हैं गुरुकुल के अलग अलग। पहला कहता है हमारा जो आश्रम है, हमारा जो गुरुकुल है, उसमें जो ज्ञान की चर्चा होती है, हमारे आश्रम के जो छात्र है उनमें जितना ज्ञान है इस सारे संसार में ऐसा ज्ञान कहीं पर भी नहीं है, इतने ज्ञानी हमारे आश्रम में है। दूसरा कहता है ये तो कुछ नहीं, हमारे जो आश्रम में जो पवित्रता है, जो ब्रह्मचर्य की साधना होती है, ऐसी ब्रह्मचर्य की साधना पूरे विश्व में किसी भी आश्रम में नहीं होती है। तीसरा कहता है ये तो दोनों कुछ भी नहीं है, हमारे आश्रम में जितनी हर एक विद्यार्थी विनम्र है, जितनी विनम्रता हमारे आश्रम में है, ह्यूमिलिटी, उतनी मजाल किसी और आश्रम के संसार की, उतने विनम्र होंगे हमारे इतने। अहंकार किस बात का, निरंकारिता का, हम इस संसार के सबसे अधिक निरंकारी लोग हैं। यदि कोई आकर कह दे कि तुमसे वो थोड़े ज्यादा निरंकारी है तो एकदम बेचैनी होती है। अगर कोई आके हमसे कह दे तुमसे ज्यादा निमित्त भाव उसमें है, तो हमारे निमित्त भाव को अगर ठेस लगती है तो शायद वो निमित्त भाव ही झूठा है। धारणाएं हम में बहुत है, इसका अहंकार। योगी काम को जीत चुका है, क्रोध को जीत चुका है, लोभ को जीत चुका है, काम क्रोध लोभ मोह को भी जीता है, परंतु योगी में क्या रह जाता है कि मैंने जीता है, मैंने ज्यादा जीता है, इसने कम जीता है, मेरा क्रोध समाप्त हो गया है, इनमें अभी भी है, मेरा मैं संपूर्ण नष्ट मोह हूं, इसमें बहुत मोह अभी भी है, रीस। और चौथा है सेवाओं में रीस, ये मेन टॉपिक है, सेवाओं में रीस। इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी पॉइंट्स है? सबसे पहले हमारा ये जो स्थान है ज्यादा अच्छा है, तुमसे बड़ा है, इतना बड़ा हमारा क्या रिट्रीट सेंटर, ऐसे थोड़ी बनता है, कितनी तपस्या लगती है, हाँ योग करना पड़ता है, और स्थान दूसरा,
वो भड़ी मेला कर रहे
हैं, उनसे बड़ा मेला हम करेंगे, उनसे बड़ा हम करेंगे, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की, हम उससे बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे, और स्टूडेंट्स हमारे बहुत स्टूडेंट्स है, 1200-1000 हमारे स्टूडेंट्स, और ऐसे नहीं है सब क्रीम क्वालिटी है, ऐसे कोई छोटे मोटे लिंबू टिंबू हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, क्रीम है, एक एक बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक, और सभी का सफेद कपड़े पहन के आते, सब पक्की पक्के धारणा वाले हैं हमारे, और सेंटर की संख्या, हमारे सेंटर्स ज्यादा है, ये एक ही जगह पर हमारे 200 है, हमारे पास वीआईपी बहुत ज्यादा है, हमारे ये ज्यादा है, और हमारे पास गाड़ी वाले भी बहुत है, और वो एक बार सुनाया था ना, अच्छी बात तो नहीं है, रमेश भाई साहब ने सुनाई थी, वो शिवरात्रि का प्रोग्राम था, तो एक सेंटर वाले चले गए गवर्नर के पास, पीए के पास, और उसको आमंत्रण दिया कि हमारे ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम है, आप जरूर आना है, तो ये पहला, फिर उसके बाद में दूसरे सेंटर वाले गए, तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आप जरूर आना, तो उन्होंने कहा हमको ऑलरेडी आपके तरफ से इनविटेशन मिल चुका है, उन्होंने कहां से मिला, तो यहां से मिला, तो उन्होंने उसने कहा वहां बिल्कुल मत जाना, वो अच्छे नहीं, हमारे इधर आना, वहां मत जाना, अच्छे लोग नहीं, हमारे यहां आना, कौन बोल रहा है, दूसरा सेंटर रीस, और रीस किस में,
कभी एक ही प्रोग्राम के लिए 3-3 जोन के लोग जाते
शायद हम ये भूल रहे हैं कि हम सब एक ही परिवार के हैं, कि एक ही है, इसमें अलग अलग नहीं है,
बहुत बड़ी भूल है,
परंतु इसमें भी रीस का भाव, कॉम्पीट करना, और रीस सेवाओं में कहां कहां, एरिया, हमारी एरिया बड़ी है, और हो गया वीआईपी, हाँ नंबर ऑफ सेंटर्स, एरिया ऑफ सेंटर, प्लेस, हाँ हमारे
डिपार्टमेंट,
जैसे कि एक ही जगह पर, एक ही सेंटर के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे भी हमारे डिपार्टमेंट ज्यादा है, हमारे हैंड्स ज्यादा है, हमारे पास लोग ज्यादा है, हमारी व्यवस्था अच्छी है, हमारे सेंटर का डेकोरेशन, डेकोरेशन ज्यादा अच्छा है, पॉश है, एकदम पॉश और डेकोरेटेड है, और ऐसी ऐसी चीजें हैं, एक जगह हम गए थे वहां पर, वो बहुत बड़ा एक रिट्रीट सेंटर पर, सुबह से लेकर शाम तक हर एक यही बता रहा था, ये जो चीजें ना ये जापान से लाई है, ये जो गुलदस्ता है ना ये उधर से मंगाया है, और ये जो चीज है ना वो वहां से आई है, इसी का वर्णन चल रहा था। बाबा ने कहा है योग आश्रम है, सेवा स्थान अर्थात योग आश्रम, वो उसमें वैसी ही सादगी चाहिए कि वहां आते ही लोग वहां के डेकोरेशन देखने में ही लग जाए, ऐसे डेकोरेशन संसार में कम है क्या? किसी भी 5-स्टार होटल में जाओ उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है, फिर हमको लगता है हमारा शांतिवन इतना बड़ा है और इतना सब कुछ है वहां पर हर चीज, अब बाहर के देशों में जाओ तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, एक रीति से वो आर्थिक रीति से या तो आर्किटेक्चर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, ऐसे संसार में कमी नहीं है, संसार में तो यही है, यही तो संसार में है दिखावा, कितना पॉश है, और कितना वहां पर एसी है और ये है और कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स है, यही संसार में है, वहां आध्यात्मिकता थोड़ी है। हमारा बाबा ने कहा है सेवा केंद्र है योग आश्रम, वहां जाते ही पवित्रता और सादगी का अनुभव होना चाहिए। लोग आते ही उनको लगे कि हमारा भी जीवन ऐसे उच्च विचार वाला और ऐसा सादा होना चाहिए। उसमें इतना भर दिया है डेकोरेशन की चीजें कि सारा ध्यान शॉपिंग में ही, इसलिए क्योंकि दूसरी जगह नहीं है तो हमको वो करना है। और सेवाओं में रीस, मेरा वीआईपी, ये हमारा वीआईपी है, तुम इसको लेना मत इसको हम लेके जाएंगे मधुबन इसको हम लेके जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। कब से हम इसके पीछे पड़े हैं, हम 2 साल से किसी के पीछे पड़े हैं उसको मधुबन लेके जाने के लिए, और कोई दूसरा ही आ जाता है और उनको लेके जाता है मधुबन। अब लक्ष्य हमारा था मधुबन पहुंचाना या हम लेके जाइए, लक्ष्य क्या था, हम लेके जाए, शायद ऐसा था परंतु उसमें ये कल हमने बात की थी भावनाओं की शुद्धि, हमारी भावनाएं अशुद्ध हो जाती है बहुत सारी, आसपास जो लोग हैं जिन्होंने हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छी हमसे बात नहीं की, अच्छा कुछ हमसे गलत किया, उनके प्रति हमारी भावनाएं बहुत निगेटिव हो जाती है। हमारे विचार तो अभी भी श्रेष्ठ ही है, हम श्रीमद के विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, परंतु ध्यान रहे, ख्याल करो, ध्यान रहे, आज की मुरली है ना, संकल्प कहीं विकल्प का रूप ना धारण कर ले, आज की साकार मुरली है। ध्यान रखो कि संकल्प कहीं विकल्प का रूप ना धारण कर ले। संकल्प तो श्रेष्ठ है, महान है, श्रीमद है, ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, वो सब एक तरफ है, परंतु जो भावनाएं हैं एक दूसरों के प्रति वो निगेटिव है। और हम हमेशा भावनाओं के आधार से कार्य में आते हैं, विचार के आधार से नहीं। किसी के प्रति हमने बहुत अच्छे विचार कर रखे परंतु हमारी भावना उसके प्रति दूषित है, और हम जब भी उससे मिलते हमें ये याद आता है कि 10 साल पहले इसने हमको ऐसा ऐसा कहा था, वो बात अभी भी चुभी हुई है इधर तीर की तरह, और जब भी उसको देखते हैं वो बात सबसे पहले याद आती है। भावनाएं अशुद्ध है तो व्यवहार भी ऐसा ही होगा। इसके लिए काम विचारों पर नहीं करना है, विचारों पर हम अब तक काम करते आ रहे हैं कि विचारों को श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ संकल्प, परंतु एक दूसरा तल है, वो है भावनाओं का तल, वो है फीलिंग्स और इमोशंस का तल, उस पर थोड़ा काम करना है। ये तो सबसे सूक्ष्म है, विचार तो बहुत ऊपर है। पहले 3 तल, एक देह का तल है, एक विचार का तल है, एक भावनाओं का तल है। काम जो करना है इस भावनाओं के तल पर करना है। एक नजर दौड़ाकर अगर हम देखें 10 लोगों को भी देखें आसपास वाले, तो हमें पता चलेगा कि हमारी इनके प्रति हम निगेटिविटी से भरे हुए हैं इन आत्माओं के प्रति, और हम दूसरी तरफ हमें ही पता नहीं है क्योंकि ये इतनी गहरी परतें हैं अंदर ही अंदर, वो यदि ये सर्कल है और यहां पर है वो निगेटिविटी, और हम जो कार्य कर रहे हैं परिधि पर है, विचार जो है परिधि पर है, भावनाएं जो है वो केंद्र में है, हम परिधि पर कार्य कर रहे हैं, परिधि पर हम सेवाएं कर रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, परंतु अचानक परिधि पर रहते रहते किसी ने कुछ कह दिया, वो सीधा भावना बनकर केंद्र पर आ गई है, और जो कर्म निकल रहे हैं वो उस केंद्र का ही आधार लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि भावनाएं हमारी निगेटिव है उसके प्रति। क्यों निगेटिव है, उसके हमारे पास बहुत सारे कारण है, क्योंकि उसने ये किया हमारे साथ, हमारे जीवन में उसने ऐसी ऐसी बाधाएं डाली, उसने हमें ये कहा, ऐसा ऐसा गलत व्यवहार किया, ये उसको नहीं करना चाहिए था फिर भी किया, और रहना उन्हीं के साथ है, और भावनाएं हमारी आंतरिक दूषित है, पर ऊपर से हम दिखा नहीं सकते। हो सकता है वो हमारा सीनियर है, बोल भी नहीं सकते, और हमारी और हमें ऊपर से तो लगता है हमारा सब अच्छा ही है, परंतु जो हर्ट हुआ था वो अंदर चला गया है अवचेतन में, फीलिंग्स जो है वो निगेटिव है। तो काम जो करना है वो भावनाओं पर काम करना है, और ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है कितनी आत्माओं के प्रति हमारी निगेटिव भावना है। विचार भावनाओं के आधार पर विचार निर्मित होते हैं, परंतु हाँ विचार भी भावनाओं को निर्माण कर सकते हैं यदि विचार शक्तिशाली हो। इसके लिए ज्ञान चिंतन बहुत जरूरी है, इसके लिए ज्ञान का चिंतन बहुत जरूरी है। अभी बाबा ये जो बातें कह रहे हैं ये दादियों से बातें कर रहे हैं 78 में, कितनी सूक्ष्म बातें। अगर एक नजर इसको अगर हम एक बार पढ़ लिए और छोड़ दिए तो क्या समझ में आएगा। कई लोग कहते हैं हमारी 69 से हम मुरलियां पढ़ना चालू कर रहे हैं, मुरलियां पढ़ के अभी एक बार हो गया है, अभी द्रिविजन चालू है, कैसे आगे जा सकते हैं बिना इसको समझे। क्या हमने समझ लिया, अभी इतना ही हमने पढ़ा थोड़ा सा ही, पर कितना इसमें गहराई है। और जो चर्चा चल रही है वो भी बहुत सतही चर्चा चल रही है, इसकी गहराई तो बहुत ज्यादा है। बाबा बात कर रहे हैं कि तुम रीस नहीं करो, रीस को हटाओ, इसका मतलब है, इसका मतलब है जेलसी ईर्ष्या, इसका मतलब जब भगवान कह रहा है इसका मतलब सबसे पहली बात इस ज्ञान मार्ग में ये स्वीकार करना कि ये अवगुण मुझ में है, ये दुर्गुण मुझ में है। ये जब साकार में आता है ना, जब तक वो ये नहीं मानते कि हमारी दुर्गति हुई है कैसे सदगति होगी। यहां पर भी जब तक हम ये ना कहे कि मुझ में वो कट थ्रोट गला घोट कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता का भाव है, मैं चाहता हूं कि दिखावा करूं, मैं चाहता हूं कि उनसे आगे जाऊं, और इस आगे जाने में सुख है, सुख उसका नहीं है कि आगे जाऊं, उससे आगे जाऊं। जैसे दिखा है एक गांव में बाढ़ आ जाती है तो एक गरीब बेचारा व्यक्ति होता है बहुत दुखी, क्योंकि गांव में इतनी बाढ़ आ गई, पानी बह गया, सारे खेत बह गए, मवेशी जो थे कैटल सब गाय वगैरह बहुत नुकसान हो गया। तो एक गरीब बेचारा बैठा रहता है, तो एक युवा किसान उसके पास आता है कि इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ, मतलब इतने दुखी क्यों हो आप, तो क्या आपका भी सब बह गया। तो वो बेचारा बैठा रहता है और वो बूढ़ा उस व्यक्ति से पूछता है, वो जवान किसान से, क्या तुम्हारे भी खेत बह गया क्या। वो कहता हाँ मेरा भी सारा खेत बह गया। तो बोलते तुम्हारे भी मवेशी बह गए पूरा कहीं बह गए। वो कहते हाँ मेरे भी मवेशी बह गए या मर गए। और बहुत सारी चीजें पूछता है कि तुम्हारे घर का क्या हुआ। वो कहता मेरा तो घर भी चला गया। तब उसको थोड़ी खुशी होती है। खुशी कब होती है, जब पता चलता है कि ये इनका तो ज्यादा नुकसान हुआ है, मेरा जो हुआ है वो कम है उसकी भेंट में। ये साइकोलॉजी ऐसी है कि हम भी उसमें हैं, हम भी उसमें ही हैं, परंतु हमें पता नहीं है कितना है वो, क्योंकि वो इतना केंद्र में, इतना केंद्र में हम अपने तक ही तो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ध्यान हमारा अपने तक जितना अंदर हम जाएंगे इतनी भावनाएं अशुद्ध है हमको पता चलेगा। हम जो ऊपर से कहते हैं सदा सबके लिए शुभ भावना हो, सबके लिए शुभ कामना हो, हमारे नारे है शुभ भावना गुड विशेष, कितना मिलियन क्या था वो, मिलियन नहीं नहीं वो क्या था, कुछ था ना बीच में गुड विशेष बैंक क्या था, शुभ भावना के वो सब हम कर रहे हैं ऊपर से, परंतु आंतरिक जो वो तो बहुत पुराना है। मिलियन मिनट्स नहीं, अभी अभी का जो था 7 बिलियन ऐसा कुछ। हाँ तो वो जो है वो सब अच्छा है, परंतु यदि हम अपने ही अंदर गिरेबान में झाके तो आसपास के लोगों के प्रति हम कितने निगेटिव है। हमारे ही डिपार्टमेंट के जो लोग है सबसे पहले तो वो लोग सबसे ज्यादा निगेटिविटी उनके, हमारे कमरे में जो बाजू में बैठा है ना उसके प्रति सबसे ज्यादा निगेटिविटी है। और हमारे संकल्प है विश्व कल्याण की, इधर भूकंप हुआ हम योग कर रहे हैं कि उसकी आत्माओं को शांति सुख पवित्रता, दूर दूर की सभी आत्माओं को हमें सुख शांति पवित्रता की सकाश देनी। और जो बाजू वाला है जो हम सो गए थे और अचानक आते ही लाइट चालू कर दिया, पर हम उसको कह भी नहीं सकते कुछ, जाते जाते पैर मार के चला गया, हमारी चप्पल लेके चला गया, चप्पल ही गायब। अब हमको जाना था, हमको अर्जेंट क्लास में जाना है, ये निकल ही नहीं रहा है बाथरूम से, और फिर हम ये सब करके लड़ाई झगड़ा करके फिर आते हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें संपूर्ण ग्लोब में फैल रही है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, परंतु ये हम विचार के तल पे कार्य कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं, हम कार्य जो कर रहे हैं विचारों के तल पर कार्य कर रहे हैं, हमें कार्य करना है भावनाओं के तल पे। उसके लिए एक एक आत्मा को इमर्ज करना पड़ेगा, वही जो बाजू में बैठता है, इधर बैठता है, पीछे बैठता है, आगे रहता है, काम दिनचर्या में सारे दिन पर 10 लोगों के संपर्क में हम आते हैं सबसे ज्यादा, एक एक को देखो और उनके प्रति जो निगेटिव भावना है उनको सामने लाओ और एक एक को न्यूट्रलाइज करो, तब इतना गहरा ये काम है। ये हमने नहीं किया है, बाकी सब किया है, भाषण तो बहुत ठोके है, परंतु ये जो काम है ये नहीं किया है। ओम शांति।